Satyanam, Satyanam, Satyanam Ji. What a guru, what a guru, what a guru Ji. Satyanam, Satyanam, Satyanam Ji. What a guru, what a guru, what a guru Ji. Satyanam, Satyanam, Satyanam Ji. What a guru, what a guru, what a guru Ji. Satyanam, Satyanam, Satyanam Ji. What a guru, what a guru, what a guruji. Satyanam, Satyanam, Satyanam ji. What a guru, what a guru, what a guruji. Satyanam, Satyanam, Satyanam ji. What a guru, what a guru, what a guruji. Satyanam, Satyanam, Satyanam ji. What a guru, what a guru, what a guruji. Satyam, Satyanam, Satyanam ji. What a guru, what a guru, what a guru ji. Satyam, Satyanam, Satyanam ji. What a guru, what a guru, what a guru ji. Satyam, Satyanam, Satyanam.
सतनाम वाहिगुरु, हम सबका हार्दिक स्वागत ओशो रेडियो की नई कड़ी में। आज की म्यूजिकल जर्नी के कलर्स हैं गुरु प्रसाद, जिसमें ओशो गुरु नानक के सूत्र एक ओमकार सतनाम पर बोलते हुए हमें गुरु प्रसाद की ओर इशारा कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं देवा मितेन की लेटेस्ट एल्बम अ डीपर लाइट से लिए गए गुरु मंत्रा के साथ।
Namah.
my Shri Guru.
Ah, सन्यासी अपने कारण अमीर है, उससे तुम छीन नहीं सकते। बुद्ध से तुम क्या छीनोगे, नानक से तुम क्या छीनोगे, कुछ भी छीन के तुम नानक को कम न कर पाओगे। कुछ दे के ज्यादा ना कर पाओगे, कुछ जोड़ नहीं सकते, कुछ घटा नहीं सकते। नानक जो भी है उस परम सहारे के साथ है, तुम्हारा कोई सहारा नहीं। और वो परम सहारा अलग नहीं, परमात्मा निराधार है, तुम भी निराधार हो। और जिस दिन तुम निराधार होने को राजी हो जाओगे उसी दिन परमात्मा तुम्हारा मिलन हो जाएगा। ये जो परमात्मा की व्याख्या है, ये व्याख्या दार्शनिक की व्याख्या नहीं है, ये व्याख्या साधक के लिए, ताकि तुम समझ जाओ कि परमात्मा के ये लक्षण, और अगर तुम्हें परमात्मा को पाना है तो इन्हीं लक्षणों को तुम्हें अपनी साधना बना लेना। छोटे रूप में तुम्हें परमात्मा होने की कोशिश में लग जाना। जैसे जैसे तुम उसके समान होने लगोगे वैसे वैसे तालमेल बैठने लगेगा, दोनों के बीच धुन बजने लगेगी। अयोनी स्वयंभू है, वह गुरु कृपा से प्राप्त होता है। क्यों कहते हैं गुरु कृपा से? क्या मनुष्य का अपना श्रम काफी नहीं? इस संबंध में एक सूक्ष्म बात समझ लेनी जरूरी, क्योंकि नानक गुरु पर बहुत जोर देंगे। गुरु के बिना तो मिल ही नहीं सकता परमात्मा, वो कहेंगे। क्या कारण? अगर परमात्मा मौजूद है तो सीधा सीधा मैं उससे मिल क्यों नहीं सकता? गुरु के बीच में लेने की जरूरत क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं गुरु की कोई जरूरत नहीं। बुद्धि को तर्क को ठीक भी मालूम पड़ता है, क्या जरूरत? जब परमात्मा मौजूद है, मैं भी परमात्मा से पैदा हुआ, गुरु भी परमात्मा से पैदा हुआ, तो गुरु को बीच में क्यों खड़ा करना, क्या आवश्यकता है? मन तो ये चाहता भी है कि गुरु बीच में खड़ा ना किया जाए, इसलिए कृष्णमूर्ति के आसपास अहंकारी लोगों की जमात इकट्ठी हो गई। कृष्णमूर्ति बिल्कुल ठीक कहते हैं, गुरु की जरूरत नहीं अगर तुम अपने अहंकार को खुद ही गिराने में समर्थ हो जाओ। लेकिन अपने अहंकार को गिराना वैसा ही कठिन है जैसे अपने ही जूते के बंद को पकड़ के खुद को उठाना। अपने अहंकार को गिराना वैसे ही मुश्किल है जैसे कुत्ता अपनी ही पूंछ को पकड़ने की कोशिश करे। जितने जोर से छलांग लगाता उतनी जोर से पूंछ भी छलांग लगाती। अपने अहंकार को तुम गिराओगे कैसे? अगर गिरा सकते हो तो कृष्णमूर्ति ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, कोई भी जरूरत नहीं है किसी गुरु की। लेकिन वही सारी उलझन है। अगर तुम अपने अहंकार को गिराने में समर्थ भी हो जाओ और ये कहो कि मैंने अपना अहंकार गिरा दिया तो ये नया अहंकार पैदा होगा, ये पुराने से ज्यादा खतरनाक है। गुरु की इसलिए जरूरत है कि ये दूसरा अहंकार पैदा ना हो सके। तुम कहोगे गुरु प्रसाद से, तुम ये अहंकार नहीं तो तुम ये बना लोगे कि मैं कितना विनम्र, मुझ जैसा कोई भी विनम्र नहीं। अब ये मैंने नए रास्ते पकड़े, ये अहंकार ने नई तरकीबें खोजी। कल कहता था मुझसे धनी कोई भी नहीं, अकड़। आज कहता है मुझसे विनम्र कोई भी नहीं, अकड़। वही रस्सी जल गई, अकल रह गई, अकल को कौन मिटाएगा? इसलिए नानक का जोर है परमात्मा को पाने में तो कोई अड़चन नहीं, सीधे ही पाया जा सकता है, क्योंकि वो सामने ही मौजूद है, तुम्हारी नाक के बिल्कुल सीध में, जहां तुम जाते हो सब तरफ वो मौजूद है। लेकिन एक अड़चन है, और वो अड़चन ये है कि तुम भीतर खड़े हो, इसे तुम कैसे गिराओगे? इसलिए गुरु प्रसाद से साधक श्रम करेगा, लेकिन धारणा यही रखेगा होगा गुरु के कृपा से। ये जो गुरु कृपा की धारणा है ये तुम्हारे अहंकार को बनने न देगी, पुराने को गिरा देगी, नए को बनने न देगी। अन्यथा एक बीमारी जाती है दूसरी उसकी जगह खड़ी हो जाती है। और इसलिए एक बड़े मजे की घटना घटी है, कृष्णमूर्ति के पास अहंकारियों की जमात इकट्ठी हो गई। वो जमात उन लोगों की है जो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, उनको बिल्कुल राहत मिल गई, किसी के चरण नहीं छूना चाहते, उनको बड़ा सहारा मिल गया। उन्होंने कहा गुरु की कोई जरूरत ही नहीं, हम खुद ही पालेंगे। और यही अड़चन, अगर नानक जैसा व्यक्ति कृष्णमूर्ति के पास हो, रामकृष्ण जैसा व्यक्ति कृष्णमूर्ति के पास हो तो कोई अड़चन नहीं। लेकिन जो लोग इकट्ठे होते हैं वे ही लोग हैं जो अहंकार गिराने में असमर्थ है, इनको गुरु की जरूरत है। ये बड़े मजे की घटना है, कृष्णमूर्ति के पास जितने लोग हैं उनको गुरु की जरूरत है, नानक के पास जितने लोग थे बिना गुरु के भी पा सकते थे। कहोगे कि मैं पहली खड़ी कर रहा हूं, नानक के पास जो लोग थे बिना गुरु के पा सकते थे क्योंकि वो तैयार थे गुरु प्रसाद को स्वीकार करने को, वो तैयार थे अपने को छोड़ने को। पाया तो बिना गुरु के जाता है, लेकिन गुरु की धारणा तुम्हारे अहंकार को गिराने में सहयोगी हो जाती। तुम अकड़ से नहीं भरते, नहीं तो तुम कहोगे शीर्षासन करता हूं 3 घंटे, सुबह ध्यान करता हूं। एक पत्नी मेरे पास आई और उसने कहा कि मेरे पति आपके पास आते हैं, उन्हें कुछ समझाइए, हद हो गई। सिख है पति, क्या हुआ? उसने कहा कि रात 2 बजे से उठाते और जप जी का पाठ शुरू कर देते तो घर में सोना ही मुश्किल हो गया, न बच्चे सो सकते न मैं सो सकते, और उनसे कुछ कहो तो वो कहते हैं कि तुम सब उठ के पाठ करो, क्या करना। मैंने पति को बुलाया, वो मेरे पास आते थे, मैंने उनसे पूछा कि कब उठ के पाठ करते हैं, उन्होंने कहा कि बस सुबह प्रभात काल में, बस 2 बजे सुबह उठाता हूं। उनके लिए 2 बजे सुबह, तो मैंने कहा कि तुम्हारी जो सुबह है दूसरों के लिए बहुत खतरनाक हो गई। वो बोले वो उनकी गलती है, उनको सब पूछना चाहिए, आलसी है, काहिल है, सुस्त, और मैं तो सबकी सेवा ही कर रहा हूं, जोर से जप जी का पाठ करता हूं, मोहल्ले पड़ोस के लोगों के कान में भी पड़ जाती आवाज। मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो, थोड़ा कम सेवा करो मोहल्ले पड़ोस की, तुम 4 बजे धीरे धीरे लाना उचित, अन्यथा जो चढ़े हुए लोग हैं इनको उतारना बड़ा कठिन हो जाता। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, आपके मुझसे मेरा धर्म छीनना चाहते। अब यही उनकी अकड़ है कि उन जैसा पाठ करने वाला कोई नहीं, और वही अकड़ बांधा है कि जीवन भर दोहराते रहो जप जी को। असली सवाल तो अकड़ का मिटना है। इसलिए नानक बार बार कहेंगे कि क्या तुम करते हो उससे कुछ भी ना होगा जब तक कि तुम न मिट जाओ। ये गुरु की धारणा स्वयं को मिटाने की बड़ी कीमिया है, क्योंकि करो तुम कुछ कहते तुम हो गुरु प्रसाद से, उसकी कृपा से हो रहा है। मैं कर रहा हूं, बस अड़चन खड़ी हो जाएगी। अगर तुम अपने मैं को बिना किसी के सहारे के गिरा दो तो गुरु की कोई जरूरत नहीं, लेकिन करोड़ में कभी कोई एक व्यक्ति बिना गुरु के गिरा पाता है, इसलिए वो अपवाद है, उसको हमें गिनती में लेना नहीं चाहिए, उसके कारण नियम नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई व्यक्ति बिना गुरु के गिरा देता है, पर उसके लिए बड़ी गहरी समझ चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। उसके लिए इतनी गहरी समझ चाहिए कि वो अहंकार को आंख के सामने खड़ा करके देख ले, और सिर्फ देखने से अहंकार गिर जाए। उसके लिए वैसी आंख चाहिए जैसे शिव के पास कि कामदेव को देख लिया और कामदेव भस्म हो गए। इतनी अवेयरनेस, इतना होश चाहिए कोई बुद्ध कोई कृष्णमूर्ति कभी इतनी त्वरा से देख लेता है, उसके देखने की उस तीव्रता में ही सब गिर जाता है, फिर दूसरा भाव पैदा नहीं होता, क्योंकि सब राख ही गिर गई, उसे ख्याल ही नहीं होता कि मैंने कुछ किया है, हुआ। लेकिन तुम तो कुछ भी करोगे तो भीतर एक धुन बसती रहती, मैंने किया है, भजन करो तो मैंने किया है, ध्यान करो तो मैंने किया है, पूजा करो तो मैंने की है, तुम्हारा मैं तो हर तरफ से बनता है। उस एक को हम छोड़ दें, क्योंकि उस एक को बीच में लाने की कोई जरूरत भी नहीं, वो पा लेगा। लेकिन वो जो करोड़ों लोग हैं, उन करोड़ों लोगों के लिए पाने का एक ही उपाय है कि वो जो भी करें साधना, भाव यही रखें कि गुरु के प्रसाद, गुरु की कृपा से हो रहा है। भारत में बड़ी पुरानी लोकोक्ति है कि जब सतयुग था तब गुरु की इतनी जरूरत न थी, लेकिन कलयुग में गुरु की बड़ी जरूरत होगी। क्या कारण? हिंदू किस हिसाब से बांटते हैं संसार को? सतयुग में कहते हैं उस समय को जब लोग बड़े सचेत थे, बड़े सावधान थे, और कलयुग कहते हैं उस युग को जब लोग बड़े सोए हुए हैं, मूर्छित। इसलिए बुद्ध का या महावीर का धर्म उतने काम का नहीं है आज जितना नानक का धर्म। नानक का धर्म नवीनतम धर्म है, हालांकि उसको भी 500 साल हो गए, वो भी काफी पुराना हो गया, और नया चाहिए। क्योंकि बुद्ध और महावीर जिनसे बात कर रहे थे वे हमसे ज्यादा सचेत लोग थे, वे हमसे ज्यादा प्रबुद्ध लोग थे, वे हमसे ज्यादा सरल लोग थे। फिर कृष्ण जिनसे बात कर रहे थे वे और भी सरल लोग थे। जैसे हम पीछे जाते हैं वैसे सरलता है। जैसे एक आदमी अपने पीछे जाए तो बचपन में सरल होता है, जवानी में थोड़ा कठिन हो जाता, बुढ़ापे में तो बिल्कुल जटिल हो जाता। बूढ़े आदमी से तो पार पानी मुश्किल, उसे कुछ भी पता नहीं, लेकिन वो समझता है सब मुझे पता है। जिंदगी की टक्करें खानी है, इधर उधर गिरा है, कहता अनुभव बहुत ठीक रहे इकट्ठे किए हैं, लेकिन वो सोचता है कि बड़े अनुभव से ज्ञान इकट्ठा कर लिया। बच्चा सरल, वो सतयुग है। बूढ़ा बहुत जटिल, वो कलयुग है। और बूढ़े की मूर्छा बढ़ती जाती, बढ़नी चाहिए क्योंकि मौत करीब आ रही। बच्चे का होश ताजा होता है क्योंकि अभी जीवन का स्रोत बहुत करीब। बच्चा अभी परमात्मा से निकली लहर की भांति, बूढ़ा धूप से भर गया, परमात्मा में गिरने के करीब। बच्चा ताजा फूल, बूढ़ा मुरझा गया, जाने के करीब, जीवन ऊर्जा छीन हो रही। कलयुग का अर्थ है ऐसा समय जब अंत करीब आ रहा है, जिंदगी बूढ़ी हो गई। उस कलयुग में तो गुरु के बिना बिल्कुल न हो सकेगा, क्योंकि तुम हर हालत में अपने अहंकार से भर जाओगे। जब तुम छोटे छोटे काम करके अहंकार से भर जाते हो तो तुम साधना करके कैसे न भरोगे? तुमने एक छोटा सा मकान बना लिया है तुम अकड़े फिरते हो, कि तुमने एक तिजोरी भर ली तुम अकड़े फिरते हो। जब तुम परम धन की खोज में जाओगे तो तुम्हारी अकड़ तो बहुत हो जाएगी। तो जो आदमी मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, उसकी अकड़ देखो, वो सबकी तरफ देखता है कि तुम सब नरक में पड़ोगे, सड़ोगे। मैं मंदिर जाता हूं रोज, तुम सब भ्रष्ट पापी। वो जो आदमी राम नाम ले लेता है वो समझता है कि बस स्वर्ग का द्वार उसके लिए निश्चित हो गया और से सब नरक में पड़ने वाले। मूर्छा जितनी होगी उतनी गुरु की जरूरत है। इसको तुम ऐसा समझ लो, जितनी तुम्हारे जीवन में निद्रा हो उतना गुरु जरूरी, जितने तुम्हारे जीवन में जागृति हो उतना गुरु कम जरूरी। अगर तुम परिपूर्ण जागरूक हो गुरु की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर तुम बिल्कुल सोए हो तो तुम अपने आप जगोगे कैसे? कोई तुम्हें हिलाएगा तो ही तुम जग सकते हो, तब भी डर है कि तुम करवट लेके सो जाओ। वो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। आदि सच, जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वह आदि में सत्य है, युगों के आरंभ में सत्य है, अभी सत्य है, नानक कहते हैं वह सदा सत्य है, भविष्य में भी सत्य है। सत्य और असत्य की यही परिभाषा है। असत्य वो जो कभी नहीं था, अब है और कभी फिर नहीं हो जाएगा। असत्य का अर्थ है दो छोरों पर जो नहीं और बीच में है। सपना, सुबह तुम उठे तब खो गया, रात तुम जब सोए तब नहीं था। इसलिए तो सुबह तुम कहते हो सपना झूठा था, सच नहीं, क्योंकि सांझ नहीं था, सुबह फिर नहीं है। तुम्हारा ये शरीर एक दिन नहीं था, एक दिन फिर नहीं हो जाएगा। ये शरीर झूठा है। क्रोध आया, एक क्षण पहले नहीं था और घड़ी भर बाद फिर चला जाएगा। ये क्रोध सपना है, ये सच नहीं। जो सदा है वही सत्य है। और अगर तुम इसको धारणा को गहरे ले जाओ तो तुम्हारे जीवन में रूपांतरण हो जाएगा। उससे बहुत ज्यादा ग्रसित मत होना जो बदलता है। तुम उसी की तलाश करना जो अबदला, सदा स्थायी और फिर। कौन है तुम्हारे भीतर जो कभी नहीं बदलता, उसको ही खोजो। जरूर वो तुम्हारे भीतर है, क्योंकि सब बदलाहट उसी पे होती, जैसे गाड़ी का चाक चलता है। एक कील पे चलता है जो ठहरी रहती, चाक चलता रहता है, कील ठहरी रहती। तुम कील को अलग कर लो, चाक फौरन गिर जाएगा। जो परिवर्तन हो रहा है वो भी शाश्वत के ऊपर हो रहा है। कील आत्मा की ठहरी हुई है, शरीर का चक्र घूम रहा है। जैसे ही कील अलग हुई, चाक गिर जाता है। नानक कहते हैं आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वही सत्य है, वही एक, क्योंकि वो पहले भी था, अभी भी है, कल भी होगा, सदा रहेगा। और से सब सपना। ये एक वचन अगर तुम्हारे मन में गहरा बैठ जाए, जब क्रोध आए तब दोहराना अपने मन में, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। घृणा आए, लोभ आए, दोहराना। और ध्यान रखना कि जो अभी नहीं था, अभी हुआ, सपना खो जाएगा। इसमें ज्यादा ग्रसित होने की जरूरत नहीं, साक्षी भाव रखना। धीरे धीरे तुम पाओगे कि व्यर्थ अपने आप गिरने लगा, क्योंकि तुम्हारे उससे संबंध टूट गए और सार्थक का जन्म होने लगा, शाश्वत उठने लगा, संसार खोने लगा। सोची सोची न हो गई, जिस सोची लखबार, चुपे चुपे न हो गई, जिस लाई रहा लिवतार। भूखिया भूख न उतरो, जिस बनना पुरिया भार। सहस सियाणपा लख होई, ता एक न चले नाली। किब सचियारा होइए, किब कूड़े तुटपाली। हुकुम रजाई चलना, नानक लिखिया नाली। बड़ा कीमती बहुमूल्य सूत्र है, नानक का सब सार। सोचकर भी हम उसे सोच नहीं सकते, यद्यपि हम लाखों बार सोच सकते, सोच सोचकर उसे कभी किसी ने पाया नहीं। सोच सोचकर ही तो हमने उसे गमाया। जितना हम सोचते हैं उतने ही तो विचारों में हम खो जाते। परमात्मा कोई विचार नहीं, वो कोई तर्क की निष्पत्ति नहीं, वो कोई मस्तिष्क का निष्कर्ष नहीं। परमात्मा तो सत्य है, तुम्हें सोचने का सवाल नहीं, देखना है। सोचने से क्या होगा, सोचने में तो और भटक जाओगे। आंख खोलनी है, और अगर आंखें विचारों से भरी हैं तो तुम्हारी आंखें अंधी रहेंगी। आंख निर्विचार चाहिए, तभी दर्शन उपलब्ध होता है। जिसको जैन फकीर कहते हैं नो माइंड, जिसको कबीर कहते हैं उन्मनी दशा, जिसको बुद्ध कहते हैं चित्त का खो जाना, जिसको पतंजलि ने कहा है निर्विकल्प समाधि, सब विकल्प और विचार जहां खो गए, वही नानक कह रहे हैं सोच सोच कर भी हम उसे सोच नहीं सकते, यद्यपि हम लाखों बार सोचते रहे। चुप होने से भी उस मौन को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता यद्यपि हम लगातार ध्यान में रह सकते हैं। क्यों? सोच के उसे पाया नहीं जा सकता, चेष्टा कर करके मौन साधा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जितनी तुम चेष्टा करोगे उतना ही तुम पाओगे मौन असंभव हो जाता। कुछ चीजें हैं जो चेष्टा से नहीं घटती, जैसे नींद नहीं आती किसी को, तो कितनी ही चेष्टा करे नींद ना आएगी। सच तो यह है जितनी चेष्टा करेगा उतनी नींद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नींद का अर्थ ही यह है कि तुम सब चेष्टा छोड़ दो तभी आएगी। तुम कोशिश जारी रखोगे, कोशिश तुम्हें जगाए रखेगी, जागने से कहीं नींद आई, कोई उपाय नींद लाने का नहीं। क्योंकि नींद आती तब जब तुम निरुपाय हो जाते, जब तुम कोई उपाय नहीं करते, पड़े हो बिस्तर पर निरुपाय, तभी नींद आ जाती। तुम अपने को जबरदस्ती कैसे मौन करोगे? तुम बैठ सकते हो, शरीर को साध सकते हो पत्थर की मूर्ति की तरह, भीतर मन उबलता रहेगा। नानक एक मुसलमान नवाब के घर मेहमान थे। नानक को क्या हिंदू क्या मुसलमान, जो ज्ञानी है उसके लिए कोई संप्रदाय की सीमा नहीं। उस नवाब ने नानक को कहा कि अगर तुम सच्ची कहते हो कि न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, तो आज शुक्रवार का दिन है, हमारे साथ नमाज पढ़ने चलो। नानक राजी हो गए, पर उन्होंने कहा कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो हम भी पढ़ेंगे। नवाब ने कहा ये भी कोई शर्त की बात हुई, हम पढ़ने जा ही रहे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, मुसलमान हिंदू सब इकट्ठे हो गए, हिंदुओं में तहलका मच गया, नानक के घर के लोग भी पहुंच गए कि ये क्या कर रहे हो। लोगों को लगा कि नानक मुसलमान होने जा रहे। लोग अपने भय से ही दूसरों को भी तौलते हैं। नानक मस्जिद गए, नमाज पढ़ी गई, नवाब बहुत नाराज हुआ, बीच बीच में लौट लौट के देखता था कि नानक ना तो झुके न नमाज पढ़ी, बस खड़े। जल्दी जल्दी नमाज पूरी की, क्योंकि क्रोध में कहीं नमाज हो सकती, करके किसी तरह पूरी। नानक पर लोग टूट पड़े और उन्होंने कहा धोखेबाज हो, कैसे साधु कैसे संत, तुमने वचन दिया नमाज पढ़ने का और तुमने की नहीं। नानक ने कहा वचन दिया था सर तो आप भूल गए, कहा था कि अगर आप नमाज पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, आपने नहीं पढ़ी तो मैं कैसे पढ़ू। नवाब ने कहा क्या कह रहे हो, उसमें हो इतने लोग गवाह हैं कि हम नमाज पढ़ रहे थे। नानक ने कहा इनकी गवाही मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं आपको देख रहा था भीतर क्या चल रहा है, आप काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। नवाब थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि खरीद वो घोड़े ही रहा था, उसका अच्छा से अच्छा घोड़ा मर गया था, उसी दिन सुबह उसी की पीड़ा से भरा था। नमाज किया खाक, यही सोच रहा था कि कैसे काबुल जाऊं, कैसे बढ़िया घोड़ा खरीदूं, क्योंकि वो घोड़ा बड़ी शान थी, इज्जत थी। और नानक ने कहा ये जो मौलवी है तुम्हारा जो पढ़वा रहा था नमाज, ये खेत में अपनी फसल काट रहा था। और ये बात सच थी, मौलवी ने भी कहा कि बात तो सच है, फसल पक गई और काटने का दिन आ गया, गांव में मजदूर नहीं मिल रहे और चिंता मन के सवार। नानक ने कहा तुम बोलो, तुमने नमाज पढ़ी जो मैं साथ दू, तुम जबरदस्ती नमाज पढ़ लो, तुम जबरदस्ती ध्यान कर लो, तुम जबरदस्ती पूजा प्रार्थना कर लो, क्या तुम कर रहे हो इसका कोई मूल्य नहीं, क्या तुम्हारे भीतर चल रहा है, तुम पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ जाओ, इससे क्या होगा, शरीर को साध लोगे इससे क्या मन सधेगा, मन में तो वही चलता रहेगा जो चल रहा है, और भी जोर से चलेगा, क्योंकि जब शरीर काम में लगा था तो शक्ति बटी थी, अब शरीर बिल्कुल निष्क्रिय है, सारी शक्ति मन को मिल गई, अब मन में और जोर से विचार उठेंगे। इसलिए लोग जब भी ध्यान करने बैठते हैं तब ज्यादा विचार उठते हैं, पूजा करने बैठते हैं तब बाजार का बहुत ख्याल आता है, जब भी बैठते हैं घंटी वगैरह बजाते हैं मंदिर में जाके, तभी पाते हैं कि भीतर मालूम क्या खराबी है, कि ऐसे सब ठीक चलता है, सिनेमा में बैठ जाए मौन आ जाता है, थोड़ी शांति हो जाती, लेकिन मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में बिल्कुल शांति नहीं। बात क्या है? सिनेमा तुम्हारी वासनाओं से संगत है, वहां वही जगाया जा रहा है जो तुम हो, वहां वही उभारा जा रहा है जो तुम्हारे भीतर भरा है, वही कूड़ा करकट, वही कचरा तुमसे तालमेल बैठ जाता है। मंदिर में कुछ ऐसी पुकार की जा रही जिससे तुम्हारा कोई तालमेल नहीं, वहां सब गड़बड़ हो जाती। नानक कहते हैं चुप होने से भी कुछ ना होगा, उस मौन को नहीं पाया जा सकता। यद्यपि हम लगातार ध्यान में रह सकते हैं, बैठे रहो दिन रात कुछ भी ना होगा, भूखों की भूख नहीं जाएगी यद्यपि हम पुरियों के पहाड़ ही क्यों ना जमा कर ले, क्योंकि ये भूख पुरियों से भरने वाली नहीं। ये जो ध्यान की भूख है, ये जो परमात्मा की भूख है, ये कोई साधारण भूख नहीं, इस संसार की कोई भी चीज इसे बुझा न सकेगी। ये तृषा अनूठी और परमात्मा ही उतरे धार बनकर तो ही बुझ सकती है। किस भांति हम सच्चे बने, किस भांति झूठ के पर्दे का नाश हो, नानक कहते हैं कि उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार जैसा उसने नियत कर रखा है, लिख रखा उसके अनुसार चलने से ही ये हो सकता है। ये वचन अति ध्यान पूर्वक समझने का है। हुकम रजाई चढ़ना नानक लिखिया नाल, नहीं तुम्हारे करने से कुछ भी न होगा। तुम जो भी करोगे तुम ही करोगे, तुम सच भी बोलोगे तो तुम्हारे झूठे व्यक्तित्व से ही सच निकलेगा, वो सच भी झूठा हो जाएगा। तुम सच लाओगे कहां से? तुम बिल्कुल झूठे हो, इससे कोई फर्क ना पड़ेगा। नानक एक गांव में ठहरे थे, गांव में जो प्रधान था गांव का, उसने निमंत्रण दिया था सारे गांव को भोज का, कोई यज्ञ चल रहा था। नानक को भी बुलाया था, नानक गए नहीं, और एक गरीब आदमी के घर में ठहरे थे। उस आदमी का नाम था लालू, गरीब बड़े था, उसकी कोई हैसियत न थी, रूखी सूखी रोटियां थी, और गांव के अमीर ने निमंत्रण दिया था, अनेक बार आदमी आए बुलाने, नहीं जब माना, अमीर खुद आया, नानक को लेके गया। नानक ने कहा तुम चाहते हो तो चलूंगा। उसने पूछा महल में ले जाकर कि मेरे शुद्धतम भोजन को इनकार करते हो, और उस गरीब का अशुद्ध भोजन, वो ब्राह्मण भी नहीं है, ये शुद्ध ब्राह्मणों ने स्नान करके गंगा जल से इस सब को तैयार किया है, पवित्रतम, और तुम इसे इनकार करते हो। नानक ने कहा कि मैं तुम जिद्दी करते हो तो कहूं, थोड़ा भोजन तुम्हारा ले आओ। लालू भी पीछे पीछे चला आया था, उससे कहा तू भी अपनी रूखी रोटी ले आ। कहते हैं प्रतीक कहानी है कि नानक ने एक हाथ में लालू की रोटी और एक हाथ में हलवा पूरी उस दंपति की लेकर निचोड़ी, लालू के सूखी रोटी से तो दूध की धार बही और दूसरे हाथ से लहू की बूंदें टपकी। नानक ने कहा तुम अशुद्ध हो तो तुम ब्राह्मणों से भोजन बनवाओ, कि गंगा के पानी को बुलवाओ, कि एक एक गेहूं को धो के साफ करके बनवाओ, इससे कोई फर्क ना पड़ेगा। तुम्हारा सारा जीवन शोषण बेईमानी चोरी झूठ का है, तुम्हारी हर रोटी में खून छिपा है। खून निकलाया नहीं, ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बात तो सच है। तुम कैसे सच्चे होगे? तुम ही तो सच्चे होगे ना, कौन उपाय करेगा? तो नानक कहते हैं तुम्हारे किए कुछ भी ना होगा। तुम बेईमान हो तो तुम्हारी सच्चाई में भी बेईमानी घुस जाएगी। तुम सच भी ऐसा बोलोगे कि जब तुम्हारी बेईमानी को उससे फायदा होता हो, तुम सच भी इस ढंग से बोलोगे कि दूसरे को दुख पहुंचे, तुम ऐसे सच की तलाश करोगे जिससे दूसरे के हृदय में छुरा। तुम झूठ से लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, तुम सच से भी नुकसान पहुंचाओगे। तुम जो भी करोगे वो गलत होगा क्योंकि तुम गलत हो। उपाय क्या है? तो नानक कहते हैं उपाय एक ही है, उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार सब उस पर छोड़ दो। जैसा वो जिलाए जियो, जैसा वो कराए करो, जहां वो ले जाए जाओ, उसका हुक्म तुम्हारी एकमात्र साधना हो जाए। तुम अपनी मर्जी हटाओ, उसकी मर्जी को आने दो। तुम स्वीकार कर लो जीवन जैसा हो, परमात्मा ने दिया है वही जाने। तुम इनकार मत करो, दुख आए तो दुख को भी इसी मर्जी और अहोभाव रखो, धन्य भाव रखो कि अगर उसने दुख दिया है तो जरूर कोई राज होगा, कोई अर्थ होगा, कोई रहस्य होगा। तुम शिकायत मत करो, तुम धन्यवाद से ही भरे रहो। वो तुम्हें जैसा रखे, गरीब तो गरीब, अमीर तो अमीर, सुख में तो सुख में, दुख में तो दुख में, एक बात तुम्हारे भीतर सतत बनी रहे कि मैं राजी हूं, तेरा हुक्म मेरा जीवन है। और तब तुम अचानक पाओगे कि तुम शांत होने लगे। जो लाख ध्यान में बैठ के नहीं होता था, वो उसकी मर्जी पे सब छोड़ देने से होने लगा, हो ही जाएगा, क्योंकि चिंता का कोई कारण न रहा। चिंता क्या है कि जैसा हो रहा है उससे अन्यथा होना चाहिए। बेटा मर गया, नहीं मरना था, ये चिंता है। दीवाना निकल गया, नहीं निकलना था, ये चिंता है। जैसा हुआ वैसा नहीं होना था, और जैसा हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। तुम अपनी मर्जी को थोपने की कोशिश कर रहे हो जीवन पर, यही तुम्हारी चिंता है। फिर इससे तुम परेशान हो, फिर इस परेशानी को भीतर ढोते हुए तुम ध्यान करने बैठते हो, तब तुम खेत में फसल काटोगे, काबुल में घोड़ा खरीदोगे। वो चिंता तुम्हारी जो थी पीछे रहेगी, वो तुम्हारे ध्यान को भी विकृत कर देगी। तब तुम कैसे शांत हो सकोगे? शांति का एक ही गुर है, तुम्हें ठीक समझ में आ जाए तो पूरब की सारी खोज समझ में आ सकती है। पूरब की सारी खोज यह लाओसे से लेकर नानक तक कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। इसका पुराना नाम भाग्य है, वो शब्द बिगड़ गया। सब शब्द बहुत दिन उपयोग करने से बिगड़ जाते, क्योंकि गलत लोग उपयोग करते हैं, गलत अर्थ जुड़ जाते। अब तो किसी की निंदा करनी हो तो कह दो कि भाग्यवादी, लेकिन भाग्य यही तो अर्थ है भाग्य का। नानक कहते हैं हुक्म रजाई चढ़ना, नानक लिखिया नाम। जो लिखा है वो होगा, लिख रखा है वही होगा। अपनी तरफ से कुछ भी करने का उपाय नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, फिर चिंता किसको, फिर बोझ किसको, जब तुम बदलना ही नहीं चाहते कुछ। जब तुम उससे राजी हो, उसकी मर्जी में राजी हो, जब तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं, तब कैसी बेचैनी, तब कैसा विचार, तब सब हल्का हो जाता, पंख लग जाते, तुम उड़ सकते हो उस आकाश में जिस आकाश का नाम है एक ओंकार सतनाम। नानक की एक ही विधि है, और वो विधि है परमात्मा की मर्जी। वो जैसा करवाए, वो जैसा रखे। ऐसा हुआ इब्राहिम, उसने बाजार में गुलाम खरीदा। गुलाम बड़ा स्वस्थ तेजस्वी था। इब्राहिम उसे घर लाया, इब्राहिम उसके प्रेम में ही पड़ गया। आदमी बड़ा प्रभावशाली था। इब्राहिम ने पूछा कि तू कैसे रहना पसंद करेगा, तो उस गुलाम ने मुस्कुरा के कहा मालिक की जो मर्जी, मेरा कैसा, मेरा होने का क्या अर्थ, आप जैसा रखेंगे वैसा रहूंगा। इब्राहिम ने पूछा तू क्या पहनना क्या खाना पसंद करता है, उसने कहा मेरी क्या पसंद, जैसा पहनाए पहनूंगा, मालिक जो खिलाए खाऊंगा। इब्राहिम ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, हम क्या नाम लेके तुझे पुकारे, उसने कहा मालिक की जो मर्जी, मेरा क्या नाम, दास का कोई नाम होता, जो नाम आप दे दें। कहते हैं इब्राहिम के जीवन में क्रांति घट गई, उठ के उसने पैर छुए इस गुलाम के और कहा कि तूने मुझे राज बता दिया जिसकी मैं तलाश में था, अब यही मेरा और मेरे मालिक का नाता, तू मेरा गुरु है। तब से इब्राहिम शांत हो गए। जो बहुत हुआ था, जो बहुत दिन नमाज पढ़ने से ना हुआ था, वो इस गुलाम के सूत्र से मिल गया। हुकुम रजाई चढ़ना नानक लिखिया नाले। सोचो, थोड़ा प्रयोग करो, जैसा रखे रहो। अपनी तरफ से तुमने बहुत कोशिश करके भी देख ली, क्या हुआ? तुम वैसे के वैसे हो, जैसा उसने भेजा था उससे विकृत भला हो गए हो, उससे सुकृत नहीं हुए हो। जैसे आए थे बचपन में भोले भाले, उतना भी नहीं बचा हाथ में, स्लेट गंदी हो गई, तुमने सब लिख डाला। आओ संत, आपके क्या तुम्हारे हाथ लगा है? थोड़े दिन नानक की सुन के देखो, छोड़ दो उस पर। इसलिए नानक कहते हैं, न जप न तप न ध्यान न धारणा, एक ही साधना है, उसकी मर्जी। जैसे ही तुम्हें ख्याल आएगा उसकी मर्जी का, तुम पाओगे भीतर सब हल्का हो जाता है, एक गहन शांति, एक वर्षा होने लगती भीतर, जहां कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। पश्चिम में इतना तनाव और चिंता है, पूरब से बहुत ज्यादा। हालांकि पूरब बहुत गरीब है, दुखी है, बीमार है, रुग्ण है, भोजन तनाव, इतना तनाव है कि करीब करीब चार आदमियों में तीन आदमी विक्षिप्त हालत में हो गए। क्या कारण? क्योंकि पश्चिम ने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की है। आदमी को पश्चिम में भरोसा, हम सब कर लेंगे, भगवान की कोई सहारे की जरूरत नहीं, भगवान है ही नहीं, आदमी सब कर लेगा। तो उसने बहुत कुछ कर भी लिया है, लेकिन आदमी बिल्कुल खो गया है, पागल हुआ जा रहा है। बाहर बहुत कुछ कर लिया, भीतर सब रुग्ण हो गया है। अगर तुम्हारे जीवन में ये सूत्र उतर जाए तो कुछ करने को नहीं बचता। जो हो रहा है होने दो, तुम तैरो मत, बहो, नदी से लड़ो मत, नदी दुश्मन नहीं, मित्र। तुम बहो, लड़ने से दुश्मनी पैदा होती है, और जब तुम उल्टी धार तैरने लगते हो तब तुम नदी तुमसे संघर्ष करने लगती, तुम सोचते हो नदी मुझसे दुश्मनी ले रही। नदी को क्या दुश्मनी? नदी को तुम्हारा पता भी नहीं है, तुम अपने ही हाथ उल्टी धारा बह रहे हो। तुम्हारी मर्जी यानी उल्टी धारा, अहंकार यानी उल्टी धारा, उसकी मर्जी, तुम धारा के साथ एक हो गए। अब नदी जहां ले जाए वही मंजिल है, जहां लगा दे वही किनारा है, डुबा दे तो वो भी मंजिल है। फिर कैसी चीज, कैसा दुख? तुमने दुख की जड़ काट दी। बड़ा कीमती ये सूत्र है। नानक कहते हैं, उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार, जैसा उसने नियत कर रखा है, लिख रखा है, उसके अनुसार चलने से ही यह हो सकता है। तो नानक ने अहंकार के सब द्वार बंद कर दिए। पहले तो गुरु प्रसाद, कि तुम जो भी करो, जो भी उपलब्धि हो वो गुरु की कृपा, और फिर जो भी हो जीवन की धारा, वो जहां ले जाए उसका हुक्म, फिर कुछ और करने को बचता है। न लगेगी कि तुम्हें भी पता चल जाए।
सतनाम करता पुरुष
सोची सोची न हो गई जे सोची लखबार, छुपे छुपे न हो गई जे लाई रहा लिवदार, भुखिया भुख न उतरो जे बना पुरिया भार, सह सियानता लग हुई तो एक न चले नाल, किब सचियारा हो ये किब कूड़े तुटपाल, हुकुम रजाई चढ़ना नानक
आज के एपिसोड में लिया गया अन्य संगीत म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो के इवनिंग सत्संग विद द मास्टर, समाधि म्यूजिक और संन्यास म्यूजिक से लिया गया है। साथ ही ओशो रेडियो की एक नई कड़ी तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
तुम मेरे शरीर को जाके अर्थी पर चढ़ा के जला देना, लेकिन अगर किसी ने हृदय से भर के मुझसे प्रश्न पूछा तो उसे उत्तर मिल जाए, क्योंकि मैं तो हूं, मैं तो रहूंगा, मुझे जलाने का कोई उपाय नहीं और मुझे मिटाने का कोई उपाय नहीं।
just say yes to love. Just say yes to life. Just say yes,
yes
to the laughter and the blessings of the Master. Just say yes.